श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप अध्याय सात श्लोक क्रमांक 20। कामस्तस्तर हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृतया नियतः स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। ये जो शब्द है हृतज्ञान, ये बहुत अच्छा है। आप एक चीज देख सकते हैं कि भगवान के पास भी व्यक्ति भौतिक इच्छा से आ सकता है और देवताओं के पास भी भौतिक इच्छा से आ सकता है। तो भगवान इस बात को क्यों बोल रहे हैं कि देवताओं के पास जाने वाला हृतक ज्ञान है? क्योंकि वो ये सोच रहा है, क्या उसको ज्ञान नहीं है और उसको ये ज्ञान नहीं है कि वो सोच रहा है कि देवता लोग जैसे कि सूर्य देव बहुत जल्दी बीमारी ठीक कर देते हैं लेकिन भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण नहीं कर पाएंगे। तो ये हृतक ज्ञान का लक्षण है। और वह ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी ऐसी प्रकृति हो गई है, कई कई जन्मों में इस प्रकार से उनके संस्कार बने हुए हैं। तो एक विशिष्ट प्रकार के देवी देवता की पूजा करने की ही संस्कार या इच्छा या उनकी प्रवृत्ति हो गई है और भगवान कृष्ण के शरणागत होने का भाव ये उत्पन्न नहीं होता है। एक अद्भुत बात और भी है कि जो व्यक्ति भौतिक इच्छा से भी भगवान कृष्ण के पास आता है वो भक्ति के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुष परम। कि व्यक्ति के पास कोई भी इच्छा हो, कोई भी इच्छा नहीं हो या मोक्ष की इच्छा हो, उसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए क्योंकि अंततो गत्वा वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा देवी देवताओं की पूजा करने वालों के संग नहीं होता है। एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हम देवी देवताओं की या भगवान भी देवी देवताओं की पूजा करने वालों की भर्त्सना नहीं कर रहे हैं, खाली ये बता रहे हैं कि ऐसा करने वाले ज्ञान से रहित हैं और ये लोग मुक्त नहीं हो सकेंगे। और ये सोचना कि भगवान कृष्ण की या भगवान विष्णु की भक्ति करके हमें कोई भौतिक सुख सुविधा प्राप्त नहीं होगी, ऐसा भी नहीं होता है। भगवान अपने भक्तों को जो भी उनकी भक्ति के लिए और जीवन के लिए आवश्यक होता है बहुत देते हैं, बहुत अधिक भी देते हैं, लेकिन वो वस्तुएं नहीं देते हैं जिससे उनकी भक्ति में बाधा पड़ जाए। एक प्रेम, एक विचारशील पिता की तरह। तात्पर्य, जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप देखेंगे कोई व्यक्ति या कोई भक्त बड़ी तत्परता से भक्ति कर रहे हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, ये समझते हुए कि तत्परता का अर्थ है इनके हृदय से भौतिक कलमश नष्ट हो गया है, इसीलिए साधना में भक्ति में बड़े दृढ़ता से लगे हैं। और जो नहीं लगा है उसका अभी कलमश बाकी है, इसी कारण से भक्ति के पथ पे उसकी श्रद्धा जो है वो भी इतना दृढ़ नहीं हुई है। जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। मतलब भौतिक इच्छाएं रहती हैं, भोग की इच्छाएं रहती हैं, तो भगवान से कॉम्पिटिटर की भावना, भगवान से कॉम्पिटिशन करने की भावना हमेशा चित्त में रहती है, कम या अधिक मात्रा में। इसीलिए जितनी मात्रा में भौतिक इच्छाएं रहती हैं उतनी मात्रा में अभक्त होने की प्रवृत्ति भी रहती है। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारे भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। इस संबंध में बड़ा एक अच्छा उदाहरण है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को भगवान की तरफ मोड़ दे तो वो इच्छाएं इस प्रकार से हैं जैसे कि कोई बीज जल गया हो, उसे भून दिया जाए चने का गेहूं का, तो वो और आगे पेड़ के रूप में प्रतिफलित नहीं होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब कोई एक बीज पृथ्वी में आरोपित किया जाता है सही तरह से तो उससे कई बीज निकलते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम किसी भौतिक इच्छा को लेकर के किसी देवी देवता के पास जाते हैं तो उससे आगे बहुत सारी भौतिक इच्छाओं का निर्माण होता है। लेकिन वही इच्छा अगर हम भगवान के साथ समर्पित कर देते हैं तो फिर और किसी भौतिक इच्छा का निर्माण नहीं होता। सत्यम दिशति अर्थतो अर्थतो निर्णाम नैवार्थदो यत पुनरर्थिता यतः स्वयं विदत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छापिधानाम निजपाद पल्लवम। तो ये चीज है कि भगवान के पास कोई व्यक्ति आता है भौतिक इच्छा से तो निश्चित रूप से उस अर्थी की जिसका अर्थ लेके आया है उसकी इच्छा को भगवान पूर्ण करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करते जिससे और भौतिक इच्छा हो। और भगवान का चरण ना भी चाहे तो भी भगवान उसको शुद्ध करके अपने प्रेम अपना भक्ति देते हैं। ये बात श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो। बहुत ही सुंदर बात है। और देखिए मैंने श्लोक को कोट ही किया था, जैसा कि भागवत में कहा गया है, अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब साधना भक्ति करते हैं तो बहुत बार भक्तों के हृदय में रहता है, अरे प्रभु जी हमारे हृदय में तो इतनी काम वासना है या और कोई क्रोध है, ये है मेरे हृदय में, ये अनर्थ है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अब भागवतम क्या बोल रही है, हमको प्रोत्साहन दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि आपके हृदय में चाहे कोई भी वासना हो, कोई भी काम हो, कितनी भी बुरी स्थिति हो, अच्छी स्थिति हो, कुछ भी हो, आप भगवान श्री कृष्ण का भजन करें क्योंकि इसी से हमारा परम कल्याण होगा, अंततोगत्वा इसी से हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा और भगवान के धाम की प्राप्ति करेंगे। इस संबंध में मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं कि जो अभिधेय है भगवान के चरणों की प्राप्ति का तरीका है वो भक्ति है। हमारे भौतिक गुणों से भी भगवान बिल्कुल आकर्षित नहीं होते हैं, लेकिन जब उसमें भक्ति का समावेश हो, यानी भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा हो, तो यही गुण जो है फिर भगवान के उस भक्ति के तत्व से मिल करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत सहयोगी हो जाते हैं। और हमारे हृदय की कोई भी अवस्था हो, ये ध्यान रखना चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र से ही हमारा उद्धार होगा और कभी भी हरे कृष्ण मंत्र को इसलिए त्यागना नहीं चाहिए। जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है वे भौतिक इच्छाओं को की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। आध्यात्मिक चेतना खोने का अर्थ कि मैं शाश्वत जीव हूं और ये छोटी छोटी वस्तुओं को प्राप्त करके मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं, अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक, प्रायः जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं अगर उनसे पूछा जाए कि आप इसी विधि विधान का पालन क्यों कर रहे हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं रहता, बस ये विश्वास होता है कि इस देवता की कृपा से हमें कुछ भौतिक लाभ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि इस भौतिक जगत में कितना भी भौतिक लाभ हो, लाभ तो केवल इस जगत में रहने का यही है कि हमको जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का पैकेज मिलता ही रहेगा। हमारे हर जन्म को आप एक थाली की तरह मान लीजिए और इस थाली में केवल चार आइटम आते हैं, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। सब्जी दाल रोटी होती है ना, उसी प्रकार से केवल चार ही चीजें हर थाली में, चाहे वो कुत्ते के रूप में वो थाली हो, चाहे वो मनुष्य के रूप की थाली हो, कोई भी थाली हो, उस थाली में केवल ये चार आइटम ही आते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को कम से कम कभी तो बोर हो जाना चाहिए ना कि हर बार वही खिलाते हो, और भौतिक जो माया देवी हैं वो हर बार यही सर्विंग करती हैं। और अद्भुत बात है कि हर बार हम अपनी नई नई थालियों को लेकर के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं और वही डिशेज को हम बार बार खाते रहते हैं, और उसके ऊपर से थोड़ा मसाला डाल दिया जाता है। तीन मसाले हैं, एक नमक है, एक मिर्ची है, और कह सकते हैं कुछ और भी कड़वी चीज है, और वो क्या है, आदि भौतिक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट, आदि दैविक कष्ट। तो इन चार आइटमों के ऊपर, जन्म मृत्यु जरा आदि के ऊपर, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कष्ट, छिड़के जाते हैं बार बार, बुरका जाता है नमक और मिर्ची ताकि बहुत कष्ट प्राप्त हो, लेकिन फिर भी हम मूर्ख लोग समझ नहीं पाते। तो हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि देवताओं की पूजा करके हम देवताओं के पास ही पहुंचेंगे और वहां भी कष्ट बना रहेगा, तो इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा करके भगवान के धाम तक जाने का प्रयास करना चाहिए। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं, इसकी चर्चा हमने कर ली थी। किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता, वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वह जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। तो इसलिए शुद्ध भक्त का ऐसा विश्वास रहता है शास्त्रों को सुन करके भक्ति करके कि वस्तुतः मेरे पालक जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। और एक शुद्ध भक्त के जीवन में ये विश्वास भी रहता है कि जो भगवान जिस परिस्थिति मेरे को रखे हैं वो मेरे लिए अच्छा ही है, तो इसलिए वो अन्य किसी देवी देवताओं के पास भौतिक इच्छाओं को लेकर के नहीं जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो देवी देवताओं का सम्मान नहीं करता है भगवान के सेवक के रूप में, परंतु उसे भौतिक इच्छा मांगना के लिए वो प्रयास नहीं करते। वस्तुतः जितनी मात्रा में हम ये समझ लेंगे कि कोई भी भौतिक इच्छा हमको संतुष्ट नहीं कर सकती है, उतनी ही अधिक मात्रा में हम भगवान की ही शरण लेंगे और उनकी भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो अगले श्लोक में आएगा कि क्या ये श्रद्धा जो देवताओं में आ रही है वो देवता देते हैं या कोई और देता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्णा।